फिर फरमाया, अब यहां तक किताबत की बात हो गई, ठीक है। तो पहली क्या दईन में बात हुई थी, एक तो अजल मुसम्मा तक हो, एक स्पेसिफिक डेट आपको स्पेसिफाई करनी है। नंबर टू फक्तुबूहु, उसको लिख दो, लिख लो, अब लिखने के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन आ गई। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या, वस्तशहीदू, और गवाह बना लिया करो, गवाह तलब कर लिया करो। यानी अब ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई है ना, उसके ऊपर भी विटनेसेस होने चाहिए, गवाह बुलवाए जाए, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल होगा। अब ये नहीं है लिख के कोई, अब मैं कहूँ मैंने इसको कर दिया, मैं अपने घर में ही लिख के और अपने पास खुद ही अपनी अलमारी में रख लूँ, तो ये कोई काबिले एतबार चीज नहीं है, ठीक है ना। एक तो बैना कुम है ना, दरमियान तुम्हारे दोनों होने चाहिए, जिस वक्त लिखा जा रहा है, लिखने वाला भी और कर देने वाला भी और लेने वाला भी, वो यानी उनके दरमियान जो चीज बात हो रही है, लिखने वाला उसको लिखेगा और इमला ये करवाएगा जो ले रहा है। अब ये सारी डॉक्यूमेंट तैयार हो गई, इसके ऊपर आप गवाह बनाओ, गवाह लेकर आओ, ताकि कोई नाइंसाफी का जरा भी खतरा ना रहे, बात बिल्कुल पक्की हो जाए। अब इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करेगा ना, कोई किसी का हक मार लेगा, तो क्या होगा, सबूत के तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंट होगा और गवाह भी होंगे जिनके सिग्नेचर हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो गवाही देंगे कि हाँ हमने ये विटनेस किया था ये ट्रांजेक्शन। समझ तो आ गई ये बात। इसी तरह हो सकता है ये जिसने कर्ज लिया है, कितनी सुभान अल्लाह हिकमतें, अब कर्ज लेने वाले, हो सकता है कल को वो कर्ज लौटाने की पोजीशन में ही ना रहे। अब क्या, कम अज कम जिसने कर्ज दिया है उसके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, प्रूफ होगा, और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट होता तो लोगों ने कहना था क्या पता घर में ही लिख लिया होगा, नहीं उसके ऊपर सिग्नेचर भी है विटनेसेस के, तो फिर अब वो दिखाएगा कि ये देखिए इसने मेरे से कर्ज लिया था और अब ये नहीं लौटा सकता, तो हो सकता है लोग आपस में पैसे जमा करके इसको, इसकी मदद कर दें, इसको रकम अदा कर लें। इसी तरह हो सकता है, जिंदगी का तो भरोसा नहीं, हो सकता है मकरूज मर जाए। अब देखें जिसने, जिसको पैसे देने हो, जिसने कर्ज दिया हो, वो अगर मर जाएगा तो शायद मकरूज को तो इतनी फिक्र ना हो कि मैंने अब कर्ज लौटाना है, लेकिन जिसके पैसे कहीं मारे जा रहे हैं ना, तो मकरूज अगर मर गया, जिसने कर्ज लिया हुआ वो मर गया, तो उसको तो लाले पड़ जाएंगे कि हाय अब मेरा क्या बनेगा, मैंने तो इतने पैसे उसको दिए हुए। अब अगर कहीं लिखा पढ़ा नहीं हुआ, अब वो अगर वारसों के पास जाता है, जी आपके वालिद ने मेरे से इतने लाख लिए थे, वो कहते हैं चलो जाओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, और कर्ज लेने वाला तो दुनिया से चला गया, वो तो ना आके बताएगा कि हाँ मैंने दिए थे, वो कहेंगे सबूत दिखाओ, अब इसके पास कोई सबूत ही नहीं है अगर इसने नहीं लिखा है, और अगर सबूत के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट दिखा भी देता है, अगर उसके ऊपर कोई गवाही नहीं बनाए, तो तुम, हमें क्या पता तुम घर में ही लिख के ले आए हो, ठीक है ना। तो उस वक्त अगर उसके ऊपर गवाह भी मौजूद है ना, तो फिर आप वारसों को पता है कि जी हमारे पोतदा ने, तो वो हमारे वालिद हैं या भाई ने इतना कर्ज लिया था, ये इसका सबूत है, हमें इस कर्ज को विरासत में से पहले ये कर्ज अदा करना, क्योंकि आपको पता है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कर्ज है शहीद का भी कर्ज के बारे में सवाल होगा, उसके बाकी गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है लेकिन कर्ज को नहीं माफ करेगा, और कर्ज के साथ रूह मुअल्लक रहती है, लटकी भी रहती है जब तक कर्ज ना अदा हो जाए। तो कर्ज कोई मामूली बात नहीं है, कर्ज लेके दुनिया से चले जाना आज तो कोई बिग डील ही नहीं है, लोग कहते चलो अच्छा कर्ज लिया था, सारे ऐश भी किए दुनिया में और उसके बाद मर गए, ना लुटाना पड़ा ना कुछ, नहीं, जिसको आखिरत पे यकीन है वो तो कर्ज को अपने ऊपर एक बोझ समझता है, इसीलिए कर्ज लेना कोई पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेना ही पड़ जाए तो डू इट दिस वे, ताकि बाद में वारिस कम अज कम कर्ज को अदा कर दे, वरना देखें लेने वाला बेचारा वो तो भुगतता रहेगा वहां पे आखिरत में। और अगर ये जो जिसने कर्ज अदा दिया था उसको, अगर इसको वापस नहीं उसकी रकम मिलती तो क्या होगा क्यामत में, वो तो जाके नेकियां ले लेगा, अब तो जाहिर है वहां पे तो नहीं वो कर्ज दे सकता वापस, तो क्या देना पड़ेगा उसको, अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी उसको। बेहतर यह लिखा होगा तो वो वारसों के पास जाएगा और वो उसी वक्त उसको दे दें ताकि मामला क्लियर हो जाए। तो बस तशहीदू, गवाह बना लिया करो, शहीदैन दो गवाह। दो गवाह किससे? मेरे रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। फाइन, फिर अगर लम यकूना रजुलैन, अगर ना हो तुम्हारे पास दो मर्द। देखिए अगर दो मुस्लिम्स के दरमियान ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो मुस्लिम ही मर्द होने चाहिए, लेकिन अगर मसलन दो मर्द नहीं मिलते, वो भी आकिल हो, बाले हो, मुसलमान हो, तो क्या करो? फराजुलन, तो एक मर्द कर लो, वमरातानी, और दो औरतें कर लो जो गवाही दे। कौन होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्या शर्त हो? मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदा, उसमें से जो तुम पसंद करते हो गवाहों में से, जो जिनकी गवाही पसंद करते हो का क्या मतलब, यानी जिनकी गवाही पे आपको एतमाद है, जिनकी शोहरत अच्छी है, जो कोई ऐसे बदनामे जमाना लोग नहीं है, मतलब मुनासिब लोग हैं, ठीक है, उनको मुनासिब सही समझा जाता है सोसाइटी में, काबिले भरोसा लोग हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, तो उन जिनको तुम पसंद करते हो उनमें से एक मर्द और दो औरतों को तुम गवाह बनाओ। क्यों दो औरतों को? अंत दिल्ला एहदाहुमा, ताकि अगर भूल जाए उन दोनों में से एक, फतुज़किरा एहदाहुमल उखरा, तो याद दिहानी करा दे दूसरी उसको, इस एक को दूसरी याद करवा दे, रिमाइंड करा दे, और भूल तो आदमी भी सकता है, तो फिर आदमी का काम चांस है भूलने का, औरत के साथ ज्यादा भूल लगी हुई है, क्यों और क्या वजह है, और ये चीज यहाँ पे डिटेल में इंशाल्लाह हम देखते हैं। दो मर्द या हो या फिर एक मर्द और दो औरत, तो यहाँ पे तो पता चला कि यानी अगर एक मर्द नहीं है तो उसकी जगह दो औरतें होंगी, तो ये क्या, ये तो औरतों की गवाही आधी हो गई, और ये तो हमारी हमें तो किसके कुछ समझा ही नहीं गया, ये तो हमें ऐसे समझा गया कि हम कुछ है ही नहीं है सही, यानी विमेन लिब के जो नारा लगा ना दुनिया में, तो इस चीज को बहुत ज्यादा उछाला गया है कि इस्लाम ने देखें कितना जुल्म किया औरतों को, औरत की गवाही आधी, बल्कि कई मजाक में भी लोग कहते हैं ये आधी गवाही, औरत को क्या कहते हैं ये आधी गवाही, और इसकी वजह से औरतों को खास तौर पे दीन से मुतनफिर कराया गया कि देखो तुम्हारे तो दीन में कोई हकूक ही नहीं, तुम्हें क्या समझा जाता, तुम्हें तो ऐसे समझा जाता, तो इस चीज में औरतों को समझना चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला ने ये फरमाया, जब अभी इसीलिए मैंने इस बात पे इतना जोर दिया पहले आपको कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से समझ ली, जिसको इस बात में ईमान है उसको तो ये बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तो एक टीचर थी और वो हर वक्त ये, यानी सोशल स्टडीज की टीचर थी, वो हर वक्त ये बात कहती रहती थी कि इस्लाम ने तो औरतों को देखे कोई भी राइट्स नहीं दिए, इस्लाम ने तो औरत देखे दो औरतें गवाही देंगी तो एक मर्द की गवाही के बराबर भी, कितना जुल्म इस्लाम ने औरत के साथ किया है, और औरत बेचारी इस तरह, ऐसे इस्लाम को हम नहीं मानते, नहीं छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर किस तरह की बातें डाल के, और ऐसे इस्लाम के कवानीन को हम नहीं आने देंगे, और ऐसी शरीयत को तो हम नहीं लागू होने देंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अगर इसके पीछे देखा जाए ना, तो अल्लाह ताला ने औरत के साथ बहुत ही खैर का मामला किया। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, किसी गैर मुस्लिम ने इस कुरान को पढ़ा तो उसने कहा था कि अगर मुझे ये ना पता हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो यही समझते ना इन्होंने लिखा, तो अगर मुझे ये ना पता हो कि इनका लिखा हुआ ये कुरान है तो मैं ये समझता कि ये शायद किसी औरत ने लिखा, क्योंकि इसमें इतने औरतों के हकूक के ऊपर बात है। अब औरतों ने बात तो कोई पढ़ी होती नहीं, कोई कुरान को समझा नहीं, हिकमतें नहीं समझी, बस एक बात मिल गई कि औरत की गवाही आधी है, और उसके ऊपर ही रोना पीटना मचा दिया। इसी से पता चलता है कि औरत की अकल का हाल क्या है, ये देखें, अल्लाह ताला ने, याद रखें, हर एक की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो उसका फील्ड है जिसमें उसको अमल करना है, अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक उसके अंदर क्वालिटीज रखी। इसको ऐसे समझे मसलन, शेर है ना, उसने गोश्त खाना है, उसने शिकार करना है, तो अल्लाह ताला ने उसको कैसी जिसामत दी है, वैसी दी है ना। अब एक हिरन है, उसने घास खानी है, उसको इतने बड़े दांत नहीं चाहिए, उसको ऐसे पंजे नहीं चाहिए, उसको ऐसी वो जिसामत नहीं चाहिए, वो उसको अल्लाह ताला ने वैसी दी है। अच्छा, हर एक चीज को आप देखें, जो उसका फील्ड है ना, जिसमें उसने अमल करना है, जो उसने काम करना है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उसमें क्वालिटीज रखी। औरत का फील्ड ऑफ वर्क कह लें, या अमल कह लें, या उसका काम कह लें, वो घर की जिंदगी है। मर्द का फील्ड है बाहर की जिंदगी। अब औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां डाली, उसमें जैसे बच्चा का पैदा करना, उसकी परवरिश करना, उसको दूध पिलाना, घर की देखभाल, घर का सारे काम, अल्लाह ताला ने फिर उसको क्वालिटीज भी वैसी दी, उसके अंदर ममता डाल दी। अब वो औरत जो है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको वो क्वालिटीज दे दी जो एक माँ बनने के लिए जरूरी थी। मिसाल के तौर पे भूल जाना, निसियान औरत के साथ ज्यादा लगी। और क्यों? इसलिए कि देखें, औरत के मामलात ऐसे हैं कि अगर उसके अंदर भूल ना होती ना, तो वो एक बच्चा पैदा करके कभी दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए ना जाती। ऐसा ही है ना, अगर उसको याद रहती वो सारी पेन जिससे वो गो थ्रू हुई है ना पहले बच्चे में, तो कोई औरत दूसरा ना पैदा करती, मगर वो भूल जाती है। इसी तरह औरत के, जाहिर है, घर की जिम्मेदारियां उठाने में, घरेलू मसरूफियात में, बच्चे के साथ जो मुशक्कत है वो उठाने में भी, जो उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है, वो भी सारी भूल जाती, इसीलिए दूसरा बच्चा पैदा करती। फिर इसी तरह जो फिजिकल उसको पेन होती है, या उसकी जो फिजीक के अंदर चेंजेस आती हैं, जो उसको वीकनेस होती है, वो भूल जाती है। इसी तरह मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया, एक दर्जा उसके ऊपर दिया, तो घर में जो मामलात होती हैं उनमें फाइनल फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो मर्द की होती है। औरत कन्विंस उसको कर सकती है, लेकिन अगर नहीं कन्विंस कर पाती तो लास्ट वर्ड किसका होता है? मर्द का होता है। अब अगर औरत में निस्यान ना हो ना, तो वो तो इसी बात के ऊपर रोती पीटती रहे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये एक रहमत रखी औरत के लिए कि वो भूल जाती है बातों को, और जल्दी भूल जाती है, और ये उसके फायदे में है, क्योंकि यही उसको जरूरत है इस चीज की। ठीक है, निस्यान भी ना बाज दफा इंसान के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। मतलब अगर अल्लाह ताला निस्यान ना रखते ना, भूल ना रखते, तो जो इंसान की जिंदगी में कई गम आते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो इंसान उनको, जैसे मसलन कोई फौत हो जाता है, उसका सदमा जो होता है, जो जितना पहले दिन होता है उतना 2 साल बाद नहीं होता। अगर उतना ही रहे तो कोई बंदा जिंदा ही ना रह सके। तो भूल कोई बुरी चीज नहीं है, कहने का मकसद यह है कि हाय हाय ये बेचारी, इसको तो भूल के अंदर डाल दी, नहीं, बल्कि इन अ सेंस, बाज दफा कभी मैं किसी जगह ताजियत के लिए जाती हूँ, तो लोग कहते हैं हाय काश हमें ये दिन इसी तरह याद रहे, हमेशा ऐसे ही याद रहे, हम इसी कैफियत के अंदर रहे तो कितना अच्छा। मैं कहती हूँ खुदा की बंदियों, ये तो अल्लाह की रहमत है कि वो भुला देता है। आप तो जिंदगी गुजारने के काबिल ही ना रहे अगर आप इसी तरह रहे जिस तरह आप पहले दिन, ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला ने औरत के लिए ये सारे जो बच्चा की पैदाइश और घरेलू जो मसले मसाइल ये होते हैं, इनमें जो सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत है ना, वो इस तरह से पैदा की कि उसको भुला देता है, उसका एहसास कम हो जाता तो एक तो उसके अंदर भूल है औरत के अंदर। दूसरी, ये हम सब औरतें जानती हैं कि मर्द से ज्यादा औरतें इमोशनल होती हैं। वो भी क्यों, अल्लाह ताला ने वो भी क्यों डाला औरत में? अगर औरत इमोशनल ना हो तो बच्चे ही नहीं परवरिश कर सकती। इमोशन जरूरी है उसके लिए, इसीलिए तो बच्चा जरा सी तकलीफ उसको होती है तो औरत का फौरन दिल भर जाता है, वो उसके लिए तकलीफ महसूस करती है, उसको जल्दी उसके ऊपर रहम आ जाता है। आपने देखा नहीं है, हम जरा सी खबर सुने तो हमारा दिल इतना उदास हो जाता है, आंसू टप टप गिरने लगते हैं। वही मर्द बैठा होता है, उनको कुछ नहीं होता। तो अगर औरत के अंदर ये चीज ना होती तो बच्चा भूख से तड़प रहा है तो उसको एहसास ही ना होता। बच्चा रोने लगा हुआ, वो कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, फेंको इसको उधर। आप देखेंगे कभी मर्द जब आते हैं काम वगैरह से तो वो कहेंगे बच्चा एक दफा रोएगा, चुप करो चुप करो चुप करो, उसके बाद वो कहेंगे ले जाओ इसको यहाँ से। औरत कभी नहीं कहेगी ले जाओ इसको यहाँ से। तो औरत में अल्लाह तआला ने रहम का जो जज्बा है, तड़प जाने का, किसी की तकलीफ सुन के बेचैन हो जाने का, ये जज्बा बहुत ज्यादा रखा है, क्योंकि ये उसकी नीड है। मर्द की निस्बत ज्यादा है, मर्द सह जाते, औरत इमोशनल होती है। फिर मर्द में इंटेलेक्ट ज्यादा होता है, वो ठंडे दिल और दिमाग से फैसला कर सकता है। औरत में चूंकि इमोशन ज्यादा है, वो इमोशनल फैसले ज्यादा करती है। इमोशन जिसमें होते हैं, जल्दी से किसी के ऊपर तरस आ जाता है, कोई जरा सा रो के दिखा दे तो उसके ऊपर रहम आ जाएगा, कोई तो उस वो फिर जो इमोशंस के साथ फैसले होते हैं ना, वो सही फैसले नहीं होते। इसी तरह आप सारी औरतें ये जानती हैं, एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन किसी औरत से भी पूछे ना, वो कहती है हिसाब किताब में हम बड़े कमजोर हैं, मेरे से हिसाब किताब ना किया कराया करें, मैथ ना मेरे से कराया करें। इस तरह इकोनॉमिक्स और ये ठीक है, औरतें इस फील्ड में भी गई हैं, लेकिन काम ज्यादातर औरतों को क्या है इंटरेस्ट, घर घर को सजाना संवारना, बच्चों की टेक केयर, शॉपिंग, खुद को बनाना संवारना, ये चीजें है ना। कितनी औरतें जिनको ये है कि आजकल क्या स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स किधर करनी चाहिए, इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, पता है मर्द के लिए, मर्द उस चीज में। तो माली मामलात में अगर आप देखेंगे ना, औरत उसमें कमजोर होती है, मर्द उसमें तेज होते हैं, एक नेचुरली बात ऐसी होती है। फिर मर्द के अंदर जुर्रत, हौसला, दलेरी ज्यादा होती है। देखिए औरत को ना, औरत की सिफत ही क्या है, उसको क्या कहते हैं, सिंफे नाजुक, ना नजाकत है इसके अंदर, और यही उसकी ब्यूटी है। और मर्द की जो क्वालिटी है वो क्या है, बहादुरी, जुर्रत, हौसला। ये बातें सारी नोट करें, जो सारे मैं आपको पॉइंट्स बता रही ना, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये चीज है क्या, औरत में ये चीजें नहीं होती, उसको डराया धमकाया जाए जरा सा तो भी वो एकदम परेशान हो जाती है, उसके साथ बहस की जाए औरत के साथ तो क्या करती है, रोने लगती है या फिर कोसना शुरू हो जाएगी दूसरे को, घबरा जाती है। मर्द के साथ बहस की जाए वो खड़ा रहता है। औरत फिजिकली भी मर्द से कमजोर है, और आप देखें जब पीरियड्स होते हैं या जब प्रेगनेंसीज होती है तो फिर तो बिल्कुल ही कमजोरी आ जाती है उसके, इमोशन भी ज्यादा हो जाते हैं, कोई बात नहीं भी होगी तो रोना आ रहा है, बगैर बात के ही रोती जाए, ऐसा है ना। तो अल्लाह ताला ने ये रहमत की औरत के ऊपर कि उसको ये चीजों के अंदर नहीं डाला। ये जो शहादत है, ये जो गवाही है ना, ये तो ऑप्शनल है, यानी मर्द भी हो सकता है इसकी जगह, औरत की अगर जरूरत हो तो फिर आए। वो भी एक औरत के ऊपर सारा बोझ नहीं डाल दिया, नहीं दूसरी तुम्हारे साथ हो ताकि तुम लोगों को सपोर्ट मिले, एक अगर भूल भी जाए तो दूसरी हो। अब मुझे बताइए, जितनी भी मैंने आपको औरत की क्वालिटी बताई है और मर्द की भी बताई, गवाही देने के लिए कौन ज्यादा सुटेबल है किसी किसी फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर की बात हो रही है, याद रखें ये कर्ज की बात हो रही है, कितने पैसे थे, क्या मामला तय हुआ था, कितने किसने किसको देने थे, कब का कहा था। मिसाल के तौर पे कोई कहता है आज मैं आपको आधी अमाउंट दूंगी, 6 महीने बाद मैं आपको क्वार्टर दूंगी बाकी क्वार्टर, और उसके 3 महीने बाद मैं उसको आपको बाकी क्वार्टर दूंगी। और ये बोलते बोलते के अंदर ही भूल गया कि कितना पहले देना था तो कितना बाद। अब औरत के लिए बताएं मुझे सिर्फ ये सारी बातें, इमोशंस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, भूल के साथ, फिर जुर्रत और हौसले की कमी के साथ, फिर ये उसका फील्ड भी नहीं है जिसके अंदर उसको, एक होता है ना नेचुरली आपको कोई चीज का होता है, जैसे आप रोटी पकाना खाना बनाना नेचुरली आपको शौक, सफाइयाँ ये वो घर की और अपनी आपकी भी बनाओ से कर, नेचुरल है ये इंसान की जैसे औरत के अंदर ही रख दिया गया, लेकिन ये चीजें नहीं है नेचुरली उसके अंदर, शी हैज टू मेक एन एफर्ट के इनको समझे, और ये भी बड़ी उसके बोझल लगती है मर्द के लिए, यही चीजें ऐसे ही रोज की बातें हैं, हिसाब किताब और ये कि क्या फाइनेंसेस और ये सब चीजें और लोन्स और इन चीज के मामला। अब औरतों की बातों से अंदाजा लगा लें, एक मजलिस के अंदर औरतें बैठी हैं, दूसरी मजलिस में मर्द बैठे हैं, बातें क्या हो रही होती, तो वो कारोबारी मामला ये लेन देन और इन चीजों की बातों में औरतों को ज्यादा नहीं इंटरेस्ट होता, तो बताएं इस जब इंटरेस्ट भी ना हो उस वक्त, और फिर ये कि वैसे भी फिजिकली कमजोर है और बहस उससे की जाए, जैसे वकील बहस करते हैं आगे से पूछते हैं और बातें करते हैं, मुझे बताएं कि औरत ज्यादा सुटेबल है कि वो गवाही दे या मर्द, अल्लाह ने तो उसको इस चीज से एग्जेम्प्ट कर दिया कि तुम्हें नहीं, तू ये तुम्हारे लिए, और अदालतों के अंदर जाना औरत के लिए कितना मुश्किल है। फिर आगे आप देखेंगे आता है ये बात आएगी कि जब बुलाया जाए गवाह को गवाही देने के लिए, ये देखें आगे, वला या अब शुहदाउ इजा मा दुउ, और ना इनकार करे गवाह जब वो बुलाए जाए। अब आप देखें औरत अगर गवाह है और उसको अदालत में बुलाया जाता है, मिसाल के तौर पर वो मूव हो गई है, तो अब वो केस तो चलते हैं आगे जाते हैं, अब ये जब ट्रांजैक्शन हुई थी जब ये मामला हुआ था वो 1 साल पहले का, उसके बाद होते होते उनके मामला बिगड़ गए, अदालत में मसला चला गया, औरत मूव हो गई बच्चों के साथ कहीं और, अब उसको कहा जा रहा है कि कोई भी गवाह इनकार ना करे जब उसको बुलाया जाए, कोर्ट में अगर आना के लिए बुलाया जाएगा तो उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब मुझे बताएं कोई औरत है उसके लिए कितना मसला होगा, बच्चों को छोड़ के घर को छोड़ के वो जा रही है कहीं अदालतों के अंदर, आप कितने दिन लगते हैं गवाही देने के लिए, अकेली जाएगी कैसे जाएगी, मर्द के लिए कितना आसान है निस्बतन। अल्लाह ताला ने औरत को इस चीज से बचा लिया, और फिर जब ये जिरह और बहस होती है ना वहां पे, तो औरत की एक फितरी तौर पे है कि घबरा जाती है, कोई कुछ कह दे और कोई बहुत दलीलें दे रहा हो तो समझ नहीं आती कि आप क्या जवाब दें, तो अल्लाह ताला ने उससे भी इसको बचा लिया। ये बात नहीं है इसके अंदर, कोई ये ना समझे कि एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर है तो इसका मतलब है औरतों का मकाम कम हो गया, नहीं, जहां पे भी कुरान में आया है एक माँ और बाप की औलाद से तुम लोगों को पैदा किया गया ये आता है, फिर ये कहा गया कि अमल करोगे अगर तो चाहे मर्द करेगा चाहे औरत करेगी दोनों को अजर सेम है, ये नहीं है मर्द को 2 अजर मिलेंगे औरत को 1, अगर ये कहा जाता ना फिर कुछ जुल्म की बात आती, शायद कुछ कहने को हक बजाने को होती, कोई आपके फेयर बात होती, जो भी नेक अमल करेगा औरत को औरत होने की वजह से अजर से महरूम नहीं किया गया, ये तो आपके आज के जो इंसानी मुआशरे हैं वो देखें कैसे महरूम करते हैं, घरों के अंदर अगर बेटी या बीवी को राय देना चाहे तो उस हक से महरूम है, गए औरत है इनको क्या पता, ये तो वैसे ही उनकी अकल में, विरासत से महरूम कर देते, कहीं पे इल्म से महरूम कर दिया जाता है कि इल्म ही नहीं इन्होंने लेना, इन्होंने क्या पढ़ के करना है लड़कियां, ये तो हमारे मुआशरे जिसमें लड़की की पैदाइश होती है तो रोते हैं, अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं हुक्म दिया या ऐसा कानून नहीं बनाया, माल रखने की औरत को आजादी, अपना नाम कैरी करने की औरत को आजादी, ईसाइयत में तो औरत को ये आजादी नहीं, फाइनल अथॉरिटी वहां पे वो होती है कि आदमी जो है ना वो उसकी मिल्कियत है औरत का माल, वो खुद नहीं सेल एंड बाय कर सकती। फिर औरत को इस्लाम इतने हकूक देता है, अल्लाह ने देखे कुरान पाक में फरमाया है मर्दों को वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, भले इस तरीके से साथ इनके साथ जिंदगी गुजारो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं तो जाते जाते भी फरमा रहे हैं कि औरतें कमजोर है, ये कमजोर है तुम्हारे पास कैदी की तरह, क्योंकि निकाह में बंद गई है ना, बंदी ही नहीं है, तो तुम इनके साथ भलाई करो, फिर औरत को मर्द की खेती का, खेती होना का किसी के लिए बुरी बात है या फखर की बात है, जिल्लत की बात है या इज्जत की बात है, वो कहते हाय हमें खेती कह दिया हमें तो कितनी हमारी इंसल्ट हो गई, दूसरे मजहब कहते हैं ये औरत ने ना आदम को, ये हव्वा ने आदम को फल चखने को कहा था, ये गलती औरत ने कराई है। इस्लाम ये नहीं कहता, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है। ये दूसरे मजहब कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है कि पीरियड जो है ना वो औरत की एक सजा है। इस्लाम ये नहीं कहता, अल्लाह ने फितरत में पैदा किया इंसान को, फिर औरत को ये फरमाया कि ये मर्द के लिए सुकून की चीज है। तो बताएं जिससे सुकून हासिल होता है तो इंसान उसकी उसको कदरों कीमत की चीज समझता है या उसको सेकंड ग्रेड समझता है? तो ये सोचें, कुराने पाक में आपने ये पहले भी पढ़ा, मैंने इस चीज के ऊपर जोर भी दिया था जब तलाक के निकाह की ये बातें आई, तो आप देख रहे थे, नोट किया आपने कि अल्लाह ताला औरत की वकालत खुद फरमाता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया औरतों के भी मर्दों पर हकूक है, इसी तरह जैसे मर्दों के औरतों के। घर के सिस्टम को चलाने के लिए हाँ ये जरूर है कि फाइनल अथॉरिटी मर्द को दी, क्योंकि जाहिर है एक सिस्टम, एक ये यूनिट है, जैसे एक कंपनी हो वो दो सरबराहों से थोड़ी चल सकती है। अब दोनों ही कहें कि हम इसके प्रेसिडेंट हैं तो नहीं चल सकती, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। अब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की बात, फाइनल बात तो उसकी ही होगी ना, उसकी सुननी पड़ेगी। और दोनों कहेंगे हमने चलाना है तो निजाम चल ही नहीं सकता। कोई मुल्क दुनिया में ऐसा देखा जहां पे दो दो सदर हो? कोई कंपनी, कोई इदारा ऐसा देखा दो उसके सीईओ? तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को एक फाइनल अथॉरिटी रखा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मर्द सुपीरियर हो गए पैदाइश में, या अमल में सुपीरियर है, या अंजाम में सुपीरियर है। और खराबी तभी आती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस्लाम को कुरान को सही समझा नहीं होता, जब फैमिली सिस्टम में मर्द खुद को अपने आप को समझने लगते हैं कि हम अकबर हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने जितना दर्जा दिया है ना ये, उतने दर्जे पे ही रहना चाहिए, तभी घर की गाड़ी चलती है। जब मर्द भी अपने आप को समझने लगे हम सबसे ही अकबर हो गए, अब बस हम एक दर्जा नहीं ऊपर, हम सारे ही दर्जे ऊपर हो गए और ये तो कुछ भी नहीं, तो फिर खुद ही सोचेंगे क्या हाल होगा। क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसी औरत है जो कि जल्दबाज भी है, जो सेंसिटिव भी है, जो टची भी है, जो इमोशनल भी है, और मैंने बताया कि ये कोई भी बुरी क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि उसके रोल के मुताबिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अल्लाह ने दी। तो इसलिए इस चीज को नेगेटिव प्रोपगेंडा इससे नहीं करना चाहिए। आप ये भी देख लें, अक्सर औरतें ये शिकायत नहीं करती, हमें भूल ही जाता है हिसाब किताब, हमें भूल ही जाती कोई डेट, वो डेट थी वो तो गुजर ही गई। अपने से रेलिवेंट कामों को सबको वो अच्छी तरह जानती है, जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें बहुत अकलमंद है, क्योंकि अल्लाह ने उसको उसी फील्ड के लिए किया है ना, उसमें मर्द कमजोर होते हैं, उनको नहीं इतना समझ आती है कि इसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किससे क्या करना है, घर की क्या सफाई, क्या डेकोरेशन, क्या पकाने का, क्या ये मर्दों का फील्ड नहीं होता। ये अक्सरियत की बात करें, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते, तो उसके लिए वो चीज है। तो मर्द की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, औरतों की मुख्तलिफ हैं, और गवाही देने के लिए जो सलाहियतें मर्द के अंदर है ना, जो क्वालिटी, उनकी जरूरत ज्यादा है। ये नहीं है कि कोई भी एक से दूसरा ऊंचा हो गया, ये मुझे गवाही का हक मिल गया तो मैं बहुत ऊंचा हो गया, और इसको जो है ना एक गवाही का मिला हुआ तो इसलिए नीचे हो गए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि गवाही देना क्या कोई इनाम है या कोई जिम्मेदारी है, ये पहले बताएं। है कोई जिम्मेदारी है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इनाम नहीं है जो उनको मिल गया हमें नहीं मिला। अगर ये कोई इनाम होता तो औरतें कह सकती थी कि भाई हमारा हक कम कर दिया गया, हालांकि आप देखें कोर्ट में जाके जो जो दूसरा मुखालिफ फरीक होता है उसके खिलाफ गवाही देना, उसकी दुश्मनी मोल लेना, ये तो एक मुसीबत है। बाज दफा गवाही देने के लिए एक से शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, सफर की मुश्किलात उठानी पड़ती। तो अल्लाह ताला ने इसलिए औरत को इस चीजों से बरी रखा। अब जहां पे, हाँ एक बात समझ ले, और जहां पे ऐसे मामलात हैं जिनमें औरत ही उन मामलात को जानती है, वहां पे एक औरत की गवाही काफी है, उसमें मर्द की गवाही की जरूरत ही नहीं, यानी मर्द की गवाही को नहीं माना जाता। बात समझ आ रही है ना? मर्द की गवाही वहां पे नहीं मानी जाती उन मामलात में जो औरत से ही कंसर्न है। मिसाल के तौर पे ऐसे मामलात जो पीरियड से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात के जैसे मसलन कोई दूध पिलाने से मुतल्लिक है या बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात में मर्द की गवाही नहीं मानी जाएगी। औरत, एक औरत की गवाही काफी। अगर औरत इस्लाम के नजदीक कोई बहुत ही कम तर चीज होती तो फिर औरत की गवाही को काफी क्यों करार दिया गया? आप एक इसकी मिसाल देखें, बुखारी में यह हदीस आती है कि उकबा बिन हारिस जो थे वो बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की और एक और औरत ने कहा, एक और औरत थी कोई, उसने कहा कि मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया हुआ, जाई मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दोनों तो रजाई बहन भाई हो। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके ये वाकया अर्ज किया, आपने फरमाया तुम उस औरत को अब निकाह में किस तरह रख सकते हो जबकि ये गवाही आ चुकी है उस औरत को तलाक दे दो, क्योंकि वो उनकी रजाई बहन बन गई ना फिर तो। अब यहाँ पे देखें, एक औरत ने गवाही दी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, तो अब ये नहीं कहा गया नहीं किसी मर्द की गवाही लेकर आओ, तुम्हारी क्या आधी गवाही है, नहीं, ऐसी चीज के अंदर एक औरत की ही गवाही काफी है। तो इस तरह के मामलात के अंदर फिर औरत की गवाही कोई मोतबिर समझा जाएगा। इसी तरह जहां पे सिर्फ औरतें हों, जहां पे ये चीजें हों, वहां पे हाँ जो किसास के मामलात है, हदूद के मामलात है, उसमें जाहिर सी बात है इन चीजों को रखा जाए तो औरतों के लिए कि मुश्किल हो जाएगी गवाही देना, माली मामलात है। लेकिन हमें शायद औरतों को ये शौक है कि नहीं अगर मर्द कोई चीज कर रहे हैं तो हमने भी जब तक उनके बराबर होके ना की तो तब तक हम कुछ काबिल नहीं है। तो अगर मर्द भी ये कहें कि इन मामलात में औरतों की सुनी जा रही, वो सहाबी अगर कह देते कि इसमें तो हमें कोई मर्द की गवाही नहीं तो कैसे मानी जाए, या मर्द की गवाही यहाँ पे कोई मुतबिर है ही नहीं ऐसे मामलात में, तो मर्द भी कहें लोग अब हमारी तो यहाँ पे गवाही नहीं मानी जाती, यहाँ पे हमारी गवाही कबूल ही नहीं की जाती, तो हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझा गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये जो लोग इस तरह के प्रोपोगंडा करके लोगों को मुतनफिर करना चाहते हैं ना, तो ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, इस चीज की तहकीक करनी चाहिए। और जब आपको ये एतमाद हो ना कि मेरा अल्लाह किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला नहीं है, इसमें भी कोई हिकमत ही है, मेरे लिए कोई फायदा होगा, तो फिर इंसान को इत्मीनान रखे। और जब औरतें इस चीज के ऊपर ईमान नहीं रखती तो वो फिर तड़पती रहती है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हम तो बहुत मजलूम है, हमारे साथ तो जुल्म करता है इस्लाम, नाउज़ुबिल्ला। तो अब ये देखें, सारी बात यहां तक आ गई, इदा मादहू तक आ गई शहादत के बारे में कि गवाह कौन होने चाहिए, गवाह कैसे होने चाहिए कि वो जिन पे आप राजी हो, फिर ये कि जब गवाह को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करे, ये गवाह के ऊपर जिम्मेदारी है। और दूसरा माना इसका ये भी है कि जब गवाह से वाकया पूछा जाए तो खामोश ना रहे, इनकार ना करे, बल्कि गवाही दे। وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ, اور نہ تم سستی کرو کہ تم لکھو اس کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مقرر وقت تک کے لیے, یعنی تم لکھو چاہے چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, معاملہ چھوٹی اماؤنٹ کا ہو بڑی اماؤنٹ کا ہو۔ دیکھیں سیکنڈ ٹائم یہ تاکید آ رہی ہے کہ لکھو, لکھنا ضروری ہے, और इसमें इसको अपने आप पे बोझ ना समझो, और बल्कि स्पेसिफिक डेट के साथ लिखो, अजल के साथ लिखो ये कौन सी डेट तक का है। कोई ये ना कहे कि हाँ भाई इसकी क्या जरूरत है लिखत पढ़त की, ये तो छोटी रकम है अब इसको क्या लिखवाना। ठीक है, लेकिन जब इंसान लिखता है ना तो उसको अजर भी मिलेगा, और अजर किस बात का मिलेगा कि अल्लाह के हुक्म के को उसने इम्प्लीमेंट किया। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله